ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। लोकतंत्र प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वाली पिछली पीढ़ी के नेता नेपाली राजनीति के साझा मार्गदर्शक है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। बीते आषाढ़ 24 गते आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त रसुआगढ़ी के मितेरी पुल का चीन द्वारा पुनः निर्माण शुरू। लगभग 5 करोड़ रूपये की लागत से हुमला मोगू को जोड़ने वाले चंखेरी गांव पालिका के लोती खोला पर बेली ब्रिज का निर्माण और भारत के उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 6 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि लोकतंत्र प्राप्ति के लिए कठिन और बलिदानपूर्ण संघर्ष करने वाले पिछली पीढ़ी के नेता आज नेपाली राजनीति के साझा मार्गदर्शक बन गए हैं। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आज प्रधानमंत्री निवास वालवाटार में आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि पूर्व नेताओं के संघर्ष के मार्ग से ही देश में लोकतंत्र आया और आज जनजीवन सुगम हुआ है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को अधिनायक का अनुभव नहीं है, इसलिए वे कुछ मामलों में असहमति होने पर तानाशाही की टिप्पणी कर देते हैं। प्रधानमंत्री ओली ने राजनीतिक परिवर्तन के लिए नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्टों द्वारा कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए संयुक्त रूप से बलिदानी आंदोलन किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस संघर्ष में बीपी कोइराला प्रेरणा स्रोत रहे और आज बीपी कोइराला पुष्पलाल श्रेष्ठ जैसे पहली पीढ़ी के नेता किसी एक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के नेता बन गए हैं। इस अवसर पर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले लंबे समय से सहयोग और प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए अब दोनों बड़े दलों ने मिलकर सरकार बनाई है। बीपी कोइराला राष्ट्रीय पुरस्कार 2081 से 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। बीपी कोइराला राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना नेपाल सरकार द्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 की नीति और कार्यक्रम के तहत की गई थी। ये पुरस्कार नेपाली साहित्य और प्रजातांत्रिक आंदोलन के शिखर पुरुष बीपी कोइराला के राजनीतिक एवं साहित्यिक योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए दिया जाता है। 2078 में इसका कार्यविधि जारी होने के बाद से हर साल ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। चीन से सटे नेपाल के उत्तरी नाका रसुआगढ़ी में मितेरी पुल का निर्माण शुरू हो गया है। बीते आषाढ़ 24 गते को लेहंदे नहर में आई बाढ़ ने 10 मीटर चौड़ाई और 100 मीटर लंबाई वाले इस पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहां चीन सरकार की ओर पुनः निर्माण का काम शुरू हुआ है। ये जानकारी रसुआ के प्रमुख जिलाधिकारी अर्जुन पौडेल ने दी। उन्होंने बताया कि नेपाल और चीन के बीच आवाजाही और व्यापारिक कारोबार बंद होने के बाद पहले चरण में चीन सरकार ने बेली ब्रिज निर्माण का काम भी शुरू किया है। हुमला और मुगू जिलों को जोड़ने वाले चंखेली गांव पालिका के लोती खोला पर बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। पूर्वाधार विकास कार्यालय के प्रमुख इंजीनियर नरेश राज जैसी ने बताया कि इस बेली ब्रिज को 4,98,00,000 रुपए की लागत से बनाया गया है। करीब 5 महीने में पूरा हुए इस पुल की लंबाई 42 मीटर है, जिसमें 3 पैनल और 3 डेक लगाए गए हैं। इससे पहले लोती खोला पर पुल न होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केवल भविष्य का सपना नहीं है बल्कि ये वर्तमान समय की आवश्यकता बन चुकी है। नेपाली कांग्रेस के विज्ञान एवं सूचना प्रविधि विभाग द्वारा पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित नेपाल के विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक समग्र विश्लेषण विषय कार्यक्रम में बोलते हुए सभापति देउवा ने कहा कि सूचना प्रविधि ने जनता को तेज सरल और पारदर्शी तरीके से सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति ने मीडिया काउंसिल विधेयक पर विभिन्न विशेषज्ञों से सुझाव लिए हैं। आज हुई समिति की बैठक में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सभा द्वारा विधेयक को आम संचार परिषद विधेयक के रूप में संशोधित कर वापस भेजे जाने के बावजूद इसका नाम मीडिया काउंसिल ही रखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया काउंसिल में प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा से एक एक सांसद को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। जिला आपदा व्यवस्थापन समिति परसा की बैठक ने जिले में सूखा के कारण धान खेती में हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा मुहैया कराने का निर्णय किया है। परसा जिले में पानी के अभाव के कारण सिर्जित संकट के समाधान के उद्देश्य के साथ संपन्न जिला आपदा व्यवस्थापन समिति की बैठक ने ये निर्णय किया। बैठक में किसानों को मुआवजा, गंडक नहर के पानी के व्यवस्थापन, डीप बोरिंग और पेयजल समस्या के समाधान के लिए 8 महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। साथ ही बैठक ने धान खेती में हुई क्षति का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी कृषि ज्ञान केंद्र को सौंपी है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड और नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के बीच आज एक महत्वपूर्ण वार्ता हुई। ये वार्ता प्रचंड के निवास स्थान पर हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने देश में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की। इस दौरान वामपंथी ध्रुवीकरण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण, कम्युनिस्ट शक्तियों के एकीकरण के प्रयास, वैश्विक स्तर पर महाशक्तियों के बीच चल रहे संघर्ष और उसके प्रभाव तथा सरकार के कार्य शैली जैसे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। लंबे समय से बारिश न होने के कारण कृषि योग्य भूमि में सिंचाई और पीने के पानी का संकट उत्पन्न होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने डीप बोरिंग लगाने की योजना शुरू की है। प्रदेश के ऊर्जा, सिंचाई एवं पेयजल मंत्रालय के नेतृत्व में ये योजना लाई गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के हर वार्ड में कम से कम एक डीप बोरिंग लगाई जाएगी। ऊर्जा, सिंचाई एवं पेयजल मंत्री शेष नारायण यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धनुषा जिले के मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के परशुराम तालाब क्षेत्र में पहले चरण का काम शुरू हो चुका है। इस बीच प्रदेश सरकार ने विभिन्न जिलों में पीने के पानी की भारी कमी को देखते हुए टैंकर और दमकल के जरिए निशुल्क पानी वितरण भी शुरू कर दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस घटना के मैजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में उत्तर प्रदेश के 4, बिहार के 1 और उत्तराखंड के 1 व्यक्ति शामिल है। प्रशासन के मुताबिक भगदड़ में 28 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकतंत्र प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वाले पिछली पीढ़ी के नेता नेपाली राजनीति के साझा मार्गदर्शक है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। बीते आषाढ़ 24 गत्याई बाढ़ से क्षतिग्रस्त रसुआगढ़ी के मितेरी पुल का चीन द्वारा पुनः निर्माण शुरू। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से हुमला मोगो को जोड़ने वाले चंखेली गांव पालिका के लोती खोला पर बेली ब्रिज का निर्माण और भारत के उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में हुई 6 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।